हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुबह से शाम हो चुकी थी। धृति आज अर्नव के साथ न जाकर माधुरी के साथ गई थी। माधुरी उसे ऑब्जर्व कर रही थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा शांत थी और कुछ परेशान भी लग रही थी। कुछ देर तक तो माधुरी उसके बोलने का इंतज़ार करती रही, शायद धृति खुद उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता दे। पर जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने ही बात छेड़ी। धृति? धृति ने तुरंत ही सर घुमाकर उसे देखा। धृति, कोई बात है क्या? कुछ परेशान सी लग रही हो तुम। क्या अर्नव की वजह से तुम परेशान हो? उसने फिर से कुछ किया? माधुरी का शक सीधे अर्नव पर ही गया और इसके साथ ही उसके जबड़े भींच गए। धृति ने उसके चेहरे के भावों को बदलते देखकर तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उन पर नाराज़ हुआ जाए। असल में आज उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया, बस उसी के बारे में सोच रही हूँ मैं। कैसा ऑफ़र? माधुरी ने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया। धृति ने उसे आज अर्नव से हुई पूरी बात बता दी और जैसे ही चुप हुई, माधुरी ने खुशी व हैरानी के मिले जुले भाव से सवाल किया। मतलब अर्नव ने तुम्हें एज अ डिज़ाइनर अपकमिंग फैशन शो में पार्ट लेने का मौका दिया है? धृति ने मुँह बिचकाते हुए सहमति में सर हिला दिया। उसके चेहरे के भावों को देखते हुए माधुरी ने अगला सवाल किया, पर जहाँ तक मुझे पता है ये तो तुम्हारा सपना है। फिर आज जब अपने सपने को सच करने का इतना बड़ा मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आया है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशानी की ही तो बात है माधुरी। वो अर्नव सिंह रायज़ादा हैं जो बिना अपने मतलब के कोई काम नहीं करते। वो वही शख्स है जिसने सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया, मुझे मेरी जॉब से निकलवा दिया और दिन रात बस मुझे चोट पहुंचाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। वो बर्बाद करना चाहते हैं मुझे ताकि अपना बदला पूरा कर सके। पर अब वो एकदम से बदल गए हैं, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। अचानक मुझ पर बेवजह इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं वो? पिछले कुछ वक्त से उनका बिहेवियर भी बदल गया है और इन्हीं सब बातों ने मुझे परेशान किया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। क्या ये भी उनका कोई तरीका है मुझसे बदला लेने, मुझे दर्द देने का? या वो सच में मेरी परवाह करने लगे हैं? पर अगर ऐसा है तो क्यों है ऐसा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, पर अचानक वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका जवाब नहीं देते। और मैं इन बातों में उलझ गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हकीकत है और क्या वहम। समझ नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। नहीं समझ पा रही कि उन पर भरोसा करना ठीक होगा या नहीं। धृति ने अपनी उलझन और परेशानियां माधुरी के सामने बयां कर दीं। वो वाकई में बहुत परेशान थी और वजह था अर्नव। माधुरी उसकी स्थिति समझ रही थी। उसने धृति की हथेली को अपनी हथेली में थाम लिया और गंभीरता से बोली, धृति, अर्नव सर पर न सही पर मुझ पर तो विश्वास होगा तुम्हें। तुम मेरे कहने पर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो और सब बातों को छोड़कर अपना ध्यान सिर्फ इस फैशन शो पर लगाओ। इस फैशन शो को सारी दुनिया देखेगी। ग्रैंड लेवल पर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने के, इस फील्ड में अपना नाम बनाने के बहुत से बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। रही बात सर के बदले हुए बिहेवियर की, तो वजह चाहे जो हो, पर अगर वो अब तुम्हारे साथ ठीक से बिहेव कर रहे हैं तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि कम से कम अब वो तुम्हें और तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे। धृति को कहीं ना कहीं माधुरी की बात सही लगी तो उसने सहमति में सर हिला दिया। वैसे धृति, अर्नव सर ने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है। कैसी जिम्मेदारी? धृति आंखें बड़ी बड़ी करके सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। अर्नव से पूछना, वो बताएगा तुम्हें, माधुरी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा और उसके बाद यहाँ वहाँ की बातें करने लगी। धृति कमरे में पहुंची, उसी वक्त अर्नव फ्रेश होकर बाथरूम से कमरे में आया। दोनों की निगाहें एक पल को टकराईं, पर अगले ही पल धृति ने उस पर से निगाहें हटा ली और ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ने लगी। अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि अर्नव के शब्द उसके पैरों में बेड़ियां बनकर पड़ गए। क्या फैसला लिया तुमने? धृति के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। कुछ सेकंड उनके दरमियान गहरी खामोशी पसरी रही। फिर धृति उसकी ओर पलट गई और गंभीर सोच में गुम धीमे स्वर में बोली, मुझे नहीं पता कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हैं। ये भी नहीं जानती कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूंगी या नहीं, पर आपने मुझे एक मौका दिया है तो मैं एक ईमानदार कोशिश जरूर करूंगी। धृति का फैसला सुनकर अर्नव मन ही मन मुस्कुरा उठा। वो जानता था कि यही जवाब होगा धृति का। तो अब से दिन में जैसे तुम अपनी ड्यूटी संभालती हो वैसा ही सब करोगी और वक्त मिलने पर डिजाइंस पर वर्क कर सकती हो। इसके अलावा सुबह और शाम को जितना वक्त तुम मेरे और घर के काम में लगाती हो वो वक्त अब अपने सपने को डेडिकेट करना। अब से एक हफ्ते बाद मुझे डिजाइंस चाहिए, पर डिजाइंस रेडी करने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेना, हेल्प मिलेगी तुम्हें। धृति ने तुरंत सर हिलाया, फिर माधुरी की कही बात याद करते हुए बोली, मिस्टर सिंह, आपने माधुरी को कौन सी नई जिम्मेदारी दी है? कैसी जिम्मेदारी? धृति का सवाल सुनकर अर्णव चौंक गया और सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। धृति ने कन्फ्यूज निगाहों से उसे देखा और उलझन भरे लहजे में बोली, पता नहीं, माधुरी कह रही थी कि आपने ही उसे कोई नई जिम्मेदारी सौंपी है, और जब मैंने पूछा कि कैसी जिम्मेदारी तो कहा कि आपसे ही पूछ लूं, आप बता देंगे। अर्णव धृति का जवाब सुनकर सोच में पड़ गया, फिर अचानक ही उसे आज माधुरी से हुई बात याद आई और उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया। वो पल में समझ गया कि आखिर माधुरी किस जिम्मेदारी की बात कर रही थी। उसने धृति को देखा जो अब भी कुछ कन्फ्यूज सी उसे देख रही थी। एक्चुअली मैंने उसे तुम पर थोड़ा काम करने को कहा था। वैसे तो तुम में कोई कमी नहीं, पर तुम्हें ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है ताकि कॉन्फिडेंटली लोगों को फेस कर सको। तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए तुम्हारी ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना काफी इम्पोर्टेंट है। ओह, धृति ने होंठों को गोल करते हुए खोए स्वर में कहा, फिर कुछ उलझन भरे लहजे में बोली, पर अभी तक तो मैंने डिजाइंस भी नहीं बनाए, फिर अभी से इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं नहीं चाहता कि दोबारा कभी कोई तुम पर उंगली उठा सके, तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर टारगेट कर सके, इसलिए तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट करनी होगी। अर्णव ने संजीदगी से जवाब दिया और वहाँ से चला गया, जबकि धृति बुत बनी खड़ी बस उसे देखती ही रह गई। रात के 10 बज रहे थे। अर्णव बेड पर अपनी साइड बैठा लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था और धृति बेड के दूसरे साइड बैठी हुई थी। महीनों बाद धृति ने पेंसिल अपने हाथ में उठाई थी और अपनी कल्पना को पेपर पर उतार रही थी, पर इतने वक्त के बीतने के कारण उसकी प्रैक्टिस छूट गई थी और दिमाग को उस जोन में जाने में वक्त लग रहा था। उसने 10 से 15 शीट्स में कुछ न कुछ ड्रॉ करके उसे मरोड़कर फेंक दिया था। शायद जो सोच रही थी उसे पेपर पर उतारने में मुश्किल हो रही थी। अर्णव सब देख रहा था पर अनजान बना बैठा था। कुछ देर तक धृति यही करती रही, फिर उसने पेपर और पेंसिल लैम्प टेबल पर रखा और अपना फोन निकालकर उसमें कुछ देखने लगी। कुछ वक्त और बीता और वो थककर फोन साइड में रखकर सोने के लिए लेट गई। अर्णव खामोश बैठा उसकी हर हरकत को गहराई से ऑब्जर्व कर रहा था। धृति उसकी ओर पीठ किए लेटी थी। अर्णव खुद को कुछ देर तक काम में व्यस्त दिखाता रहा, फिर उसने साइड टेबल के ड्रॉअर से एक स्केचबुक निकाली और एक नज़र सोती हुई धृति को देखने के बाद उसमें कुछ ड्रॉ करने लगा।
अगले दिन सुबह धृति उठी तो अर्णव कमरे में नहीं था। धृति थोड़ी परेशान थी क्योंकि कल उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। वो बुझे मन से उठकर बाथरूम में चली गई। अर्णव ने सख्त ऑर्डर दिए थे कि धृति को कोई काम नहीं करने देना है, इसलिए धृति को आज कुछ नहीं करना पड़ा था। ऑफिस जाते हुए भी वो फोन में कुछ सर्च ही करती रही थी। दोपहर का वक्त हो चला था। धृति को अर्णव ने आज भी लंच के लिए अपने केबिन में बुलाया था। सुबह से कई बार उसने डिजाइंस बनाने की कोशिश की थी पर नाकाम ही रही और अर्णव अपने केबिन में बैठा सब देख रहा था। धृति का कॉन्फिडेंस अब गिरने लगा था और वो बहुत उदास भी लग रही थी। लंच में भी उसने बुझे मन से थोड़ा सा खाया और फिर उठने लगी कि अर्णव ने उसे टोक दिया। पूरा खत्म करो और जाने की इतनी हड़बड़ी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। पहले लंच करो, फिर कुछ है मेरे पास तुम्हारे लिए। अर्णव की बात सुनकर धृति सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। अर्णव ने आंखों से ही खाने का इशारा किया तो धृति मजबूरी में फिर खाना खाने लगी। लो, इसे अच्छे से देखो और पढ़ो, शायद इससे तुम्हें कोई हेल्प मिल जाए। खाने के बाद अर्णव ने एक फाइल धृति की तरफ बढ़ाते हुए ये कहा था। धृति ने पहले उस फाइल को देखा, फिर सवालिया निगाहें अर्णव की ओर उठाते हुए पूछा, ये क्या है? रिसर्च डेटा है जो कंपनी की तरफ से कलेक्ट किया गया है, साथ ही मार्केट में पहले से मौजूद डिजाइन्स हैं जो काफी फेमस हैं। इस फाइल को अच्छे से बारीकी से पढ़ो, डिजाइन्स देखो, अपने आसपास देखो और उसके बाद डिजाइन्स पर काम करना शुरू करो। अर्णव ये फाइल देकर उसकी हेल्प भी कर रहा था और उसे गाइड भी कर रहा था। धृति अब भी इन सब के पीछे की वजह समझने में असमर्थ थी, पर ये देखकर खुश भी थी कि अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अर्णव की एडवाइस को मानते हुए उसने वो फाइल ले ली और हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोली, थैंक यू, मैं आपके सजेशन को ध्यान में रखूंगी। जाओ, जाकर अपना काम शुरू करो और ध्यान रहे कि आखिर तक न हार माननी है और न ही हिम्मत हारनी है। अर्णव ने उसे मोटिवेट भी कर दिया और हिम्मत रखने को कहा। धृति की मुस्कान अब गहरी हो गई, उसने झट से सर हिलाया और केबिन से बाहर निकल गई। अर्णव अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और बटन प्रेस करते हुए धृति के केबिन की ओर निगाहें घुमा ली। उनके बीच का पर्दा बटन दबाते ही हट गया था और अब धृति अर्णव की आंखों के सामने थी। अपने केबिन में आकर धृति ने झट से फाइल खोली। उसमें शुरू में वर्किंग लेडीज की प्रेफरेंसेस और उन्हें होने वाली परेशानियों के बारे में पॉइंट्स लिखे थे। पीछे, जैसा कि अर्णव ने कहा था, मार्केट में मौजूद आउटफिट्स और उनकी खूबियां व कमियां दर्ज कीं। धृति गहराई से उस फाइल को पढ़ रही थी और अपने केबिन में बैठा अर्णव खामोशी से उसे ताक रहा था। टू बी कंटिन्यूड।